अध्याय 10
छह भारतीय इतिहास लेखन का एक सर्वेक्षण बौद्ध परंपरा। इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बौद्ध साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य में जातक सबसे प्राचीन है। इनके बाद बौद्ध त्रिपिटकों की उपादेयता बहुत है। त्रिपिटक तीन है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। महावंश तथा दीपवंश लंका के पाली काव्य हैं। मिलिंद पहो में यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का संवाद है। महावस्तु, ललित विस्तर और बुद्ध चरित तत्कालीन जीवन और संस्कृति का विस्तृत परिचय देने वाले ग्रंथ हैं। दिव्यावदान में सम्राट अशोक तथा उसके पुत्र कुणाल की गाथा है। मंजूश्री मूल कल्प में प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी तीसरी शताब्दी के बाद का संपूर्ण बौद्ध साहित्य संस्कृत में लिखा गया है। बौद्ध इतिहास शास्त्र का सर्वेक्षण। डॉक्टर ए के वार्डन ने लिखा है कि बौद्ध इतिहास शास्त्र के स्रोत भारत के विभिन्न भागों तथा उसके पड़ोसी राज्यों में बिखरे पड़े हैं, परंतु इन्होंने इतिहास लेखन की पूर्व बौद्ध परंपरा का अनुकरण किया है। कहीं कहीं अवांतर भेदों के साथ प्राचीन आख्यान, राजपुरुषों का वर्णन, ऋषियों आदि का वर्णन अपने ग्रंथों में दिया है। त्रिपिटक बुद्ध की जीवनी से संबद्ध विभिन्न घटनाओं का विवरण है। सुत्त पिटक में उपदेशों का तथा विनय पिटक में संघ की स्थापना तथा उसके नियमों का संकलन है। पाली साहित्य में त्रिपिटक साहित्य एवं अनुपाली या अनुपिटक साहित्य की गणना की जाती है, जो तत्कालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। बुद्ध वचनों का एक वर्गीकरण नौ अंगों के रूप में किया गया है, जिनमें सुत्त का अर्थ है बुद्ध उपदेश। सुत्त पिटक का विषय यद्यपि बुद्ध का उपदेश है, परंतु छठी और पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के कुछ समकालीन ब्राह्मणों, श्रमणों और परिव्राजकों के जीवन और सिद्धांतों के विवरण, लोक जीवन में प्रचलित उद्योग और व्यवसाय, राजन्य गण, जातिवाद, वर्णवाद, मनोरंजन के साधन, कला और विज्ञान, ग्राम, नगर, निगम, जनपद तथा अन्य भौगोलिक विवरण प्राप्त होता है। सुत्तों की शैली की विशिष्टताएं, संवादों का प्रयोग, इतिहास और आख्यानों का उपदेशों के बीच में समावेश, पुनरुक्तियों की अतिशयता और नाटकीय क्रियात्मकता की अभिव्यक्ति है। इन सुत्तों में दीर्घ निकाय के कुछ सुत्तों के कालानुक्रम का निश्चय कर महापंडित राहुल सांक्रत्यायन ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्धचर्या में अनुदित किया है। सुत्तों का संवेदन संवादात्मक है। ब्रह्मजाल सुत्त में प्राग बुद्धकालीन भारत का संपूर्ण सामाजिक जीवन चित्रित हो उठा है। सामंज फल सुत्त में पितृवध के पश्चाताप से संतप्त मगधराज अजातशत्रु को चित्त शांति प्राप्त करने हेतु जीवक के राजगृह स्थित आम्रवत में भगवान बुद्ध के पास आने का वर्णन है। प्रसंगवश बुद्धकालीन छह आचार्यों के नाम पूर्ण काश्यप, मक्खली, गोसाल, अजित कोश, कम्बली, प्रबुद्ध, कात्यायन, निगंठ, नारुपुत्र और संजय वेलट पुत्र का भी विवरण दिया गया है। अम्बट्ट सूत्र में अम्बष्ट नामक शिष्य के साथ भगवान बुद्ध का संवाद है। इस सूक्त का एक ऐतिहासिक महत्व यह है कि यहाँ कृष्ण को एक प्राचीन ऋषि के रूप में स्मरण किया गया है। राजा इक्ष्वाकु एवं शाक्यों की उत्पत्ति का उल्लेख भी है। सौदंड सूत्र में सौदंड शौण दंड नामक ब्राह्मण के साथ भगवान का संवाद है। कूटदंत सूत्र में माहिल सूत्र तथा दीर्घ निकाय के अन्य अनेक सूत्र संवादात्मक है। तेविज्ज सूत्र में ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण आदि उन ग्रंथों या परंपराओं का उल्लेख हुआ है जो संभवतः उस नाम की उपनिषदों की ओर संकेत करते हैं। अट्टक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदग्नि, अंगिरा, भारद्वाज, वशिष्ठ, काश्यप और भृगु इन 10 ऋषियों को यहाँ मंत्रों का कर्ता या वेदों का रचयिता बताया गया है। दीर्घ निकाय के सूत्रों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये संवादात्मक रचनाओं के रूप में प्रचलित थे और इनमें प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों और पुराणों को समाविष्ट किया गया है। महावग्ग के सूत्र। महावग्ग के महायदान सूत्र में पूर्ववर्ती 6 बुद्धों की जीवनियों का वर्णन है। महापरिवर्तन बाण सूत्र तत्कालीन गणराज्यों का प्रकाश डालता है और अन्य अनेक सूत्रों में तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं का वर्णन किया गया है, जो सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्यम निकाय। इसके अंतर्गत 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय समाज की विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता है। यह निकाय 15 वर्गों में विभाजित है, जिसमें ऐतिहासिक दृष्टि से राजवग्र, देव दहवग्र महत्वपूर्ण है। अन्य वग्गों में बुद्ध ने जिन जिन प्रदेशों, नगरों, निगमों, ग्रामों या वन प्रदेशों के से विवरण किए, उनकी एक सूची बनाई जाए तो उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में सहायक होगी। मध्यम निकाय में ब्राह्मणों के जीवन, कर्मकांड और सिद्धांत, उनके मंत्रकर्ता ऋषि, वाद परंपरा और पौरोहित्य सभी का मूर्तिमान चित्र यहाँ प्राप्त होता है। संयुक्त निकाय। बुद्धकालीन भारतीय ग्रामीण जीवन का इस निकाय में बड़ा सुंदर चित्रण मिलता है। लोक आख्यान, यक्ष, यक्षिणी, देवता और गंधर्वों का कुछ अधिक निर्देश यहाँ मिलता है। संयुक्त निकाय का अधिकांश भाग गद्य में है, किंतु प्रथम वर्ग, सागाथ वर्ग, गाथा युक्त वर्ग में भावात्मक गाथाएं भी मिलती हैं, जो आख्यानात्मक काव्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। सागाथ वर्ग के विभिन्न संयुक्तों में कोशल संयुक्त में कोशल राज प्रसेनजीत तथा मगधराज अजातशत्रु के मध्य युद्ध का विवरण है। ब्राह्मण संयुक्त में भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण की प्रवज्ञा का वर्णन है। इसी प्रकार निदान वग्ग तथा अन्य वग्गों में प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा, कौशाम्बी, नरेश, उदयन तथा लिच्छवी और कोलीय आदि क्षत्रिय राजाओं के जहाँ तहाँ वर्णन भरे पड़े हैं। भौगोलिक दृष्टि से तत्कालीन भारतीय प्रदेशों और उनके निवासियों का जीवन संबंधी ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अंगुत्तर निकाय। इस निकाय में 2308 सूत्र हैं, जिनमें बुद्ध धर्म का विस्तृत विवेचन है, जिसमें कुल प्रसादकों, चिम कथिकों, ग्रह प्रबंधकों आदि का विवरण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खुद्दक निकाय। आचार्य बुद्ध घोष ने इसमें 15 ग्रंथ स्वीकारा है, जिसके विभिन्न संस्करण सिंगल, वर्मा और श्याम में विद्यमान हैं। खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्म पद की गणना की जाती है, जिसमें 423 गाथाएं संकलित हैं। खुद्दक निकाय का चौथा ग्रंथ इतिवृत्तक है, जो गद्य और पद्य दोनों में है। इतिवृत्तक का अर्थ है ऐसा कहा गया। इसके कुल सूत्रों की संख्या 112 है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से मौखिक परंपरा में प्रचलित प्रतीत होता है। थेर गाथा और थेरी गाथा। खुद्दक निकाय के ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। थेर गाथा में 127 गाथाएं हैं और थेरी गाथा में 552 गाथाएं हैं। इन गाथाओं में इतिहास, पुराण परंपरा के गाथा, नारशंशी और की ओर ध्यान जाता है, जो इतिहास के आनुषंगिक अंग थे। जातक। खुद्दक निकाय का यह 10वां प्रसिद्ध ग्रंथ है। जातकों का कोई कोई कथानक पूरे ग्रंथ के रूप में है और कहीं कहीं उसकी कहानियों का रूप संक्षिप्त महाकाव्य जैसा है। जातक शब्द का अर्थ है जात अर्थात जन्म संबंधी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। लंका, वर्मा और श्याम में प्रचलित परंपरा के अनुसार जातक 550 हैं। प्रत्येक जातक कथा 5 भागों में विभक्त है। एक, पच्चुप्पन वत्थु। इसमें पच्चुप्पन वत्थु का अर्थ है वर्तमान काल की घटना या कथा। बुद्ध के जीवन काल में जो घटना घटी वह पच्चुप्पन वत्थु है, अतीत वत्थु। यह पूर्व जन्म का वृत्त है। प्रत्येक जातक का कथा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग यह अतीत वत्थु ही है। गाथा। गाथाएं जातक के प्राचीनतम अंश हैं। वास्तव में गाथाएं ही जातक हैं। वैयाकरण गाथाओं के बाद प्रत्येक जातक में वैयाकरण आते हैं, जिसमें गाथाओं की व्याख्या और उनका शब्दार्थ होता है। 5. समोधान। सबसे अंत में समवधान आता है, जिसमें अतीत वत्थु के पात्रों का बुद्ध के जीवन काल से पात्रों में से संबंध मिलाया जाता है। उपर्युक्त पांच अंगों के विवेचन से स्पष्ट है कि जातक गद्य पद्य मिश्रित रचनाएं हैं। गाथा भाग जातक का प्राचीनतम भाग माना जाता है। वस्तुतः केवल गाथाएं कहानी का निर्माण नहीं करती, वरन इनके ऊपर जब वर्तमान और अतीत की घटनाओं का ढांचा चढ़ाया जाता है, तब कथा वस्तु का निर्माण होता है। गाथा भाग या जिसे विंटर निज आदि विद्वानों ने गाथा जातक कहा है, वह इसका मूलाधार है। गाथाओं की संख्या बहुत अधिक है। जातक की गाथाओं का प्राचीनता निर्विवाद है। भरहुत और सांची के स्तूपों की पाषाण वेष्टनियों पर जो चित्र अंकित है, वे जातक के गद्य भाग से ही संबंधित हैं। इसमें कुछ लक्षण और अवस्थाओं के चित्रण पाक बुद्धकालीन भारत के ही हैं। जातक कथाओं का रूप लोक साहित्य का है, जो लोक जीवन से संप्रक्त थे। विटजर निज ने जातकों की कथाओं को 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें ऐतिहासिकता की दृष्टि से आख्यान परक, संवादात्मक तथा खंड काव्य के रूप में वर्णित विवरण महत्वपूर्ण है। जातकों में तत्कालीन भारत के राजनीतिक इससे 3री शताब्दी ईसा पूर्व के सांची और भरहुत के स्तूपों में जातकों के अनेक दृश्य अंकित हैं। अमरावती स्तूप में भी उसके चित्र अंकित हैं। मिलिंद पन्नों में अनेक जातक कथाओं का उद्धृत किया गया है। अजंता की चित्रकारी में भी महेश जातक अंकित है। बोध गया में भी उसके अनेक चित्र अंकित हैं। 5वीं शताब्दी में लंका में उसके 500 दृश्य अंकित किए जा चुके थे। जाग के बोरोबदूर स्तूप में वर्मा के पगान नगर में स्थित पगोडाओं में और श्याम के सुखोदय नामक प्राचीन नगर में जातक के अनेक दृश्य चित्रित मिले हैं। ब्राह्मण साहित्य और जातक आदि कालक्रम की दृष्टि से देखें तो वैदिक साहित्य की सुनहशेप की कथा यमयमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद आदि कथानक ही बुद्ध काल के हो सकते हैं। छांदोग्य और बृहदारण्यक आदि कुछ उपनिषदों की आख्यायिकाएं भी बुद्ध पूर्व काल की मानी जा सकती हैं। इसी प्रकार ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण के कुछ आख्यान भी हैं, परंतु इनका भी जातकों से और सामान्यतः पाली साहित्य से घनिष्ठ संबंध है। तेविज्य सूत्र में 10 मंत्र कर्ता ऋषियों के नामों के साथ ऐतरेय तथा तैतरेय ब्राह्मण छंदों और छंदावा ब्राह्मण का भी उल्लेख हुआ है। मध्यम निकाय के अत्सालायन सुतंत्र के आश्वलायन ब्राह्मण को प्रश्नोपनिषद के आश्वलायन से मिलाया गया है। जातकों में भी वैदिक साहित्य के साथ निकट संपर्क के अनेक लक्षण प्राप्त हैं। उद्दालक जातक में उद्दालक के तक्षशिला जाने का उल्लेख है। सेतु केतु जातक में उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु का तक्षशिला जाने का उल्लेख है। और शतपथ ब्राह्मण में उद्दालक को हम उत्तरापथ में भ्रमण करते हुए देखते हैं। अतः दोनों परंपराओं के नामों के व्यक्तियों में अभिन्नता है। जर्मन विद्वान लूडर्स ने सेतु केतु जातक में आने वाली गाथाओं को वैदिक आख्यान और महाकाव्य युगीन काव्य को मिलाने वाली कड़ी कहा है। सिंहली विद्वान मलाल शेषर का कथन है कि जातक का संबंध भारतीय साहित्य की उस आख्यान विधा से है, जिससे उत्तरकालीन महाकाव्यों का विकास हुआ है। शायण और महाभारत के साथ जातक की तुलना से विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों महाकाव्यों के सभी अंश बुद्ध पूर्व युग के नहीं हैं, क्योंकि रामायण में उल्लेख है कि चतुर्विंश सहस्राणि श्लोका नाम उक्त वात ऋषि, किंतु महाविभाषा शास्त्र से ज्ञात है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी में भी रामायण में केवल 12,000 श्लोक थे। रामायण में बुद्ध तथा गत का उल्लेख किया गया है। महाभारत में इसी प्रकार एडुको बौद्ध मंदिरों का स्पष्ट उल्लेख है। महाभारत आदि पर्व में महाराज अशोक को महासुर कहा है और महावीरियों अपराकितः के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है। जातक की अनेक गाथाओं और रामायण के श्लोकों में अद्भुत समानता है। दशरथ जातक और देवधाम जातक में राम कथा की रूपरेखा मिलती है। जयदिश जातक में राम की दंडारण्यक जाना तथा साम जातक के सदृश्यता रामायण से है। इसी प्रकार महाभारत के साथ जातक की तुलना अनेक विद्वानों ने की है, जिसमें महाजनक जातक, कुंभकार जातक, शोण जातक तथा ब्राह्मण जातक, युधिष्ठिर विदुर संवाद में महाभारत के आख्यान हैं। कुणाल जातक में कृष्ण और द्रौपदी की कथा, घट जातक में कृष्ण द्वारा कंस वध तथा अन्य अनेक जातकों में महाभारत की कथाएं मिलती हैं। पतंजलि के महाभाष्य में भी जातक कथाएं उल्लिखित हैं। प्राचीन जन साहित्य में भी और बाद के कथा साहित्य पर भी जातक का प्रभाव उपलक्षित है। सोमदेव के कथा, सरित सागर की अनेक कहानियां जातक के समान हैं। इसी प्रकार पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियां भी जातकों से प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी ईसप की कहानियां, अलिफ लैला की कहानियां आदि तथा कच्छप जातक की कहानियां ग्रीक, लैटिन, अरबी, फारसी और अनेक यूरोपीय भाषाओं के साहित्य में पाई जाती हैं। विनय पिटक, इस पिटक से वस्तुतः बौद्ध धर्म के इतिहास का लेख प्रारंभ होता है। इसमें बुद्धकालीन घटनाओं के विवरण के अतिरिक्त परिनिर्वाण के बाद का भी इतिहास संकलित किया गया है। परिनिर्वाण के लगभग 100 वर्षों पश्चात घटित द्वितीय संगीति का भी विवरण इसमें प्राप्त है। इसके पश्चात संघ कई संप्रदायों में विभक्त हो गया और विभिन्न संप्रदाय पृथक पृथक अपना इतिहास लेखन करने लगे। अभिधम्म पिटक, धम्म का विस्तार या विस्तृत विवेचन ही अभिधम्म है। इसमें स्थवीरवाद परंपरा तथा अन्य बौद्ध संप्रदायों का विवेचन किया गया है। वर्मा और सिंगल के अभिधम्म के प्रसार का विवरण प्राप्त होता है। धम्म संगणी में बाह्य और आंतरिक जगत की नैतिक व्याख्या के साथ ही साथ संघ के नैतिक नियमों का विवेचन है। इसमें विभिन्न आचारों, चित्त की व्यवस्थाओं अवस्थाओं के अतिरिक्त समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का प्रतिबिंबन प्राप्त होता है। मिलिंद पन्ह, मिलिंद प्रश्नावली, यह स्थवीरवाद बौद्ध धर्म का एक गौरव ग्रंथ है। मिलिंद शब्द ग्रीक मेनांडर नाम का भारतीय करण है। मेनांडर के प्रश्नों का समाधान भदंत नागसेन बौद्ध भिक्षु ने किया है, अतः यह ग्रंथ संवाद के रूप में लिखा गया है, जो एक ऐतिहासिक तथ्य था। इससे प्रभूत ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इसकी राजधानी सागल वर्तमान सियालकोट बतलाया गया है। स्मिथ के अनुसार 155 ईसा पूर्व में मेनांडर ने भारत पर आक्रमण किया था। मेनांडर की मुद्राएं भी भारत में मिलती हैं, जिससे उसकी ऐतिहासिकता निसंदेह प्रमाणित होती है। यूनानी राजा मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की जीवनी का वर्णन इसमें किया गया है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूनानी विद्वानों ने मेनेंडर को भारत विजेता भी कहा है, परंतु यह विजय किस सीमा तक था यह विवादास्पद है। ऐतिहासिक दृष्टि से मिलिंद प्रश्नावली बौद्ध इतिहास शास्त्र के निर्माण में अधिक योगदान देता है। वंश साहित्य, वैदिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों में वंश ब्राह्मण जैसा एक वंश है, जिसमें प्राचीन ब्राह्मण आचार्यों की परंपरा का वर्णन है और बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ आचार्यों में भी विशिष्ट आध्यात्मिक ज्ञान के ऋषियों की परंपरा दी गई है। छांदोग्य उपनिषद में इसे इतिहास पुराण कहा गया है। जो बात संस्कृत के इतिहास पुराणों के बारे में उचित है, वही तथ्य पाली के वंश ग्रंथों के संबंध में भी कही जा सकती है। पाली वंशकारों ने भारत पुराणकारों की अपेक्षा कुछ अधिक ऐतिहासिकता का परिचय दिया है। पाली का वंश साहित्य भी पुराणों के समान प्रधानतः राजाओं की वंशावलियों का ही वर्णन करता है। पाली वंश ग्रंथों में बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन है और इस प्रसंग के सद्धर्म के आचार्यों की परंपराएं भी उन्हें हैं। पाली में बुद्ध वंश और अवदान जैसे ग्रंथ पहले से ही विद्यमान थे। विद्वानों ने पाली वंश साहित्य के मुख्य वंश ग्रंथ 15 माना है। एक दीपवंश, दूसरा महावंश, तीसरा चूल वंश, चौथा बुद्ध घोष पत्ती, पांचवा सद्धम संग्रह, छठा महाबोधि वंश, सातवां धूप वंश, आठवां अंतन गलु बिहार वंश, नौवां डाठा वंश, दसवां छंकेश धातु वंश, ग्यारहवां नल्लाठ धातु वंश, बारहवां सदेह कथा, तेरहवां गंथ वंश, चौदहवां शासन वंश और पंद्रहवां संगीति वंश है। दीपवंश तथा महावंश ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विषय में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हैं। प्रोफेसर राज डेविड्स ने लिखा है कि सिंगल के इतिहास ग्रंथों की कालानुक्रमणिका इंग्लैंड और फ्रांस के उन सर्वोत्तम ग्रंथों की कालानुक्रमणिकाओं से भी, जो उन देशों में बहुत शताब्दियों बाद तक लिखे गए, किसी भी प्रकार कम महत्व वाली नहीं है। चूल वंश सन 1352 ईस्वी में चूल वंश सन 352 ईस्वी से लेकर ठीक आधुनिक काल तक लंका के इतिहास का वर्णन करता है। बुद्ध घोष की जीवनी के रूप में लिखी गई रचना है। सद्धम्म संग्रह यह एक गद्य पद्य मिश्रित रचना है जिसमें बुद्ध शासन के संग्रह के साथ साथ प्रारंभिक काल से लेकर 13वीं शताब्दी तक के भिक्षु संघ के इतिहास का वर्णन है। महाबोधि वंश या बोधि वंश अनुराधापुर में आरोपित बोधि वृक्ष की कथा है। यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है। सारी गाथाएं प्रायः महावंश से ली गई हैं। थूप वंश यह सिंगली भिक्षुम सारिपुत्र के शिष्य वाचीस सर की रचना है। यह थूप वंश स्तूप वंश भगवान बुद्ध की धातुओं पर स्मारक रूप से निर्मित स्तूपों का इतिहास है। अत्तन गलु बिहार वश 13वीं शताब्दी के मध्य भाग की यह गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इसमें ऐतिहासिक उपन्यास जैसी शैली में लंकाधिपति श्री संग बोधि का वर्णन है। अंतिम तीन परिच्छेदों में उन अनेक विहारों के निर्माण का वर्णन है जो राजा के अंतिम निवास स्थान पर बनाए गए थे। डाठा वंश इसकी रचना 12वीं शताब्दी के अंत या 13वीं सदी के आदि भाग के धर्म कीर्ति ने की। इसमें बुद्ध के दांत धातु की कथा है। इसी प्रकार चकेश धातु वंश में बुद्ध के केश धातु और ललाट धातु वंश में बुद्ध के ललाट धातु वंश की कथा है। संदेश कथा एक पत्र के रूप में है जिसे कुछ सिंगली व्यक्तियों ने वर्मी राजा भिंडन को लिखा। पत्र लेखकों ने पहले इस बात पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार ईसाई धर्म प्रचारकों ने नाना उपायों से लंका द्वीप में ईसाई धर्म का प्रचार किया। बाद में बौद्ध धर्म के 19वीं शती के स्थिति पर प्रकाश डाला है। इसी समय लंका में एक राम संदेश नामक संदेश काव्य लिखा गया। गंध वंश या पाली ग्रंथों का इतिहास है। यद्यपि यह 19वीं शताब्दी में वर्मा में लिखा गया, परंतु इतिहास शास्त्र की दृष्टि से यह ग्रंथ अद्वितीय है। पाली ग्रंथकारों और अनेक ग्रंथों का विवरण देना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें पुस्तकों और उनके रचयिताओं की सूची, रचना स्थान और रचना के उद्देश्य दिए हैं। इसमें ग्रंथकारों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक पुराण चरई, 2 अठ कथा चरिय और 3 गंध का चरिय। जो क्रमशः पुराणाचार्य, अर्थकथाचार्य, ग्रंथकाचार्य थे। इन ग्रंथों के लेखकों का पता नहीं है, उनकी भी सूची ग्रंथ वंशकार ने दी है। अंतिम वंश ग्रंथ शासन वंश है। वह वर्मी भिक्षु प्रसाद स्वामी की रचना है। प्राचीन पाली साहित्य पर आधारित होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण है। यह बुद्ध शासन का इतिहास है। बुद्ध काल से लेकर 19वीं सदी तक स्थवीर बौद्ध के विकास का इस ग्रंथ में वर्णन है। बौद्ध इतिहास शास्त्र की दृष्टि से वंश ग्रंथ अधिक ऐतिहासिक विवरण प्रदान करते हैं। इतिहास लेखन की दृष्टि से ग्रंथ वंश और शासन वंश अधिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। संस्कृत बौद्ध साहित्य। प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी तक लिखे गए महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथों में अवधान शतक, करुणा पुंडरीक, दिव्यावदान, बुद्धचरित, महावस्तु अवदान, महावस्तु, ललित विस्तर, वज्रसूची उपनिषद, वज्रच्छेदिका, संदर्भ पुंडरीक, सूत्र सुखावती, व्यूह सौंदर नंद आदि प्रमुख हैं। इन ग्रंथों से तत्कालीन समाज जीवन के अतिरिक्त प्राचीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, शिक्षा, साहित्य आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों में हिंदू इतिहास पुराण परंपरा तथा बौद्ध एवं जैन इतिहास परंपरा का सम्मिश्रण है, परंतु बौद्ध ग्रंथ होने के कारण विशेषतः बौद्ध इतिहास परंपरा का ही वर्णन है। महावस्तु अवदान दिव्यावदान में इतिहास को पांचवा वेद माना गया है। यह विवरण ब्राह्मण परंपरा में स्वीकृत इतिहास पुराण पांचवा वेद है का अनुकरण प्रतीत होता है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में पुराणों के अध्ययन तथा महावस्तु में पौराणिक आचार्यों का भी उल्लेख किया गया है। डॉक्टर गोविंद चंद पांडे ऐतिहासिक रचना की दृष्टि से अशोकावदान को महत्वपूर्ण स्वीकारते हैं। मंजू श्रीमूल कल्प एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका मूल केरल से प्राप्त हुआ है। यद्यपि यह ग्रंथ विशेषतः बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन करता है, परंतु 8वीं शताब्दी तक का भारतीय इतिहास प्रदान करता है, परंतु इसका निरूपण रूपरेखात्मक ही है। नंदों, मौर्यों, गुप्तों, मैत्रकों, मौखरियों, पुष्यभूति तथा गोपाल के इतिहास पर यह पर्याप्त प्रकाश डालता है। तिब्बती इतिहासकार तारनाथ तथा भूस्तन इसके परिपूरक स्रोत हैं। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों के इतिहास के लिए वसुमित्र, भाव, विवेक, परमार्थ तथा विनीत देव की रचनाएं विशेष रूप से सहायक हैं। वस्तुतः बौद्ध इतिहास लेखन के अंतर्गत प्राथमिक एवं गौर इतिहास लेखन के बीच विभेद किया जाना चाहिए। प्रथम वर्ग में वह साहित्य आता है जो न्यूनाधिक समसामायिक है तथा घटनाओं का परवर्ती लेखन प्रस्तुत करता है, जिसमें इतिहास की अपेक्षा पुराण कथाओं के प्रति अधिक रुचि दिखाई पड़ती है। त्रिपिटक प्रथम वर्ग का साहित्य है। महावस्तु, निदान कथा, शाक्य मुनि, बुद्ध चरित, ललित विस्तर एवं अश्वघोष चरित, बुद्ध चरित इत्यादि बुद्ध की जीवनियां दूसरे वर्ग में आती हैं। इसमें घटनाओं का निरूपण परिस्थिति परक ऐतिहासिक विवरणों के समान होकर एक नैतिक प्रतिमान के संदर्भ में रखकर दिया गया है।